सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् जं जस्सजम्मिदेशे येन विहाणेन जम्मि कालं मे णादं जिणेन नियदम् जम्मं वाहवमरणं वा तं तस्स तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मि कालं मे कोसकलिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा एवं जोनिश्चयदो जानदि दौवाणि सौवपच्चाये सो सदिट्टि सुद्धो जो कदि सोह कुदिट्टि।
जिनागम के आधार से कारण कार्य का रहस्य जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। निमित्त उपादान और चार अभावों की तो हमने चर्चा की यहाँ पर, अभी षटकारक की यहाँ विस्तृत चर्चा चल रही है। कुछ प्रश्न भी है, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये कल ही आया था प्रश्न, प्रत्येक पर्याय में अपने विवक्षित समय में उत्पन्न होने की योग्यता होती है। देखो, पर्याय की ओर से बताएंगे तो हम कहेंगे पर्याय में ही योग्यता है, और अखंड अभेद द्रव्य की ओर से कहेंगे द्रव्य में निश्चित समय पर निश्चित पर्याय रूप होने की योग्यता द्रव्य में ही पड़ी है। वो द्रव्य का योग्यता रूप धर्म है जो अनादि से ही विद्यमान है। निश्चित समय पर निश्चित पर्याय रूप से परिणमने वाला जो धर्म है, जो योग्यता है, वो द्रव्य में अनादि से ही पड़ा है, और उस निश्चित समय पर द्रव्य अपने स्वयं की योग्यता से परिणमित होता है। यहाँ प्रश्न पूछा है कि ऐसी योग्यता होती है, स्वयं के षटकारक से प्रत्येक पर्याय विद्यमान है। क्षणिक उपादान को समर्थ उपादान भी कहा। यहां त्रिकाली द्रव्य को गौण क्यों किया गया, कृपया करके समझाइए। ये गौण कहां किया है? यहां तो त्रिकाली उपादान जो है, त्रिकाली द्रव्य अलग बात है, त्रिकाली उपादान अलग बात है। जो त्रिकाली द्रव्य जिसको हम कहते हैं समय सार में, जिसको भगवान आत्मा कहते हैं, उसकी बात यहां नहीं है। ख्याल में आती कुछ बात? तो यहां तो द्रव्य द्रव्य लिया, द्रव्य किसे कहते हैं? तो अनादि अनंत पर्यायों का जो प्रवाह है, पूरा का पूरा गुण भी उसमें आ गए। गुण पर्यायवत द्रव्यम कहने से गुणों का समूह, अकेले गुणों का समूह नहीं है, उसमें तीन काल के पर्यायों का पूरा ही समूह है। भगवान ने द्रव्य किस रूप से जाना है? देखो, एक बात हमने पहले भी सुनी थी जो लघु तत्व स्फोट में आई है, प्रत्येक द्रव्य में कितनी पर्याय विद्यमान है एट अ टाइम, एक समय में, एक कहेंगे हम वर्तमान पर्याय। परंतु भगवान ने उस द्रव्य को किस रूप से जाना है या किस रूप से जान रहे हैं? अनादि से लेकर अनंत काल की सभी पर्याय, एक एक द्रव्य की सभी पर्याय उन्हें प्रत्यक्ष जानने में आ रही है। वर्तमानवत वो उसको जान रहे हैं। यानी भले द्रव्य में एक समय में एक ही पर्याय विद्यमान है, एक एक समय वाली, परंतु भगवान के ज्ञान में अनादि अनंत सभी पर्याय सभी द्रव्यों की एक साथ विद्यमान है। वो ज्ञान की अपनी योग्यता से हुई है। द्रव्य में तो अभी होने वाली है, केवल ज्ञान उसको प्रत्यक्ष, ये ज्ञान की पर्याय है। द्रव्यों की पर्याय तो द्रव्यों में जब होगी तब होगी, केवल ज्ञान की पर्याय कैसी है? सब द्रव्यों के अनादि अनंत पर्यायों को जानती हुई वो प्रकट हुई है, केवल ज्ञान की पर्याय। ये हमने पहले भी इसकी बात की थी। तो यहाँ प्रश्न है, त्रिकाली द्रव्य को क्यों गौण किया? जब जब हम निश्चय कारण समझना चाहते हैं तो जो अन्य कारण होता है उसको गौण किया जाता है, उसको उपचार से कहा जाता है। जैसे दो कारण है, निमित्त और उपादान, दोनों ही पहले बताए, फिर कहा निमित्त से दृष्टि हटाने के लिए, हमने कहा ये तो निमित्त, ये तो उपचार है, वो तो सच्चा कारण है ही नहीं है, फिर भी बताया जाता है क्योंकि वो होता है। फिर कहेंगे उसकी अपेक्षा त्रिकाली उपादान जो है वो मुख्य है, वो प्रधान कारण है, वो निश्चय कारण है। तो त्रिकाली है तो कार्य हर समय होना चाहिए, परंतु हर समय होता हुआ तो दिखाई नहीं देता, तो कहेंगे ये जो त्रिकाली कारण है ना वो व्यवहार कारण है, औपचारिक है। तो सच्चा कारण क्या है? क्षणिक उपादान। तो त्रिकाली पर से, क्योंकि हमको नियामक कारण देखना है, उसी समय वही पर्याय क्यों होती उसको देखना है, इसलिए हमने त्रिकाली को गौण करके अभी क्षणिक की बात की। क्षणिक में भी दो है, कौन से दो है? हाँ, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। अकेले पर्याय मत कहना, क्योंकि अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय तो पूर्व समय में थी और उसका व्यय इस समय में है, वर्तमान समय में, तो उसका व्यय उसको हम कारण कहेंगे। त्रिकाली की अपेक्षा उसको मुख्य करेंगे तब त्रिकाली को हम गौण कर देंगे। अब और हमें और सच्चा स्पेसिफिक कारण चाहिए तो हम कहेंगे तत्समय की पर्याय की योग्यता, यही सच्चा कारण है, उसके अपेक्षा से वो अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्ययरूप कारण को हम उसको व्यवहार औपचारिक कारण कहेंगे। इससे ये मुख्य गौण, जिसको पहले हमने मुख्य किया था उसी को गौण करते हुए हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें एग्जैक्ट निश्चय कारण कौन सा है, निश्चय क्यों कहा उसको, ये वही पर्याय उसी समय में क्यों उत्पन्न हुई, इसका जो नियामक कारण है उसकी चर्चा यहाँ है। तो हमें उसी समय कार्य क्यों हुआ इसका पता चलता है। अभी तक तो हम निमित्त की ही बात सच्ची मान रहे थे कि निमित्त ही सच्चा उपादान कारण, ये सच्चा कारण है। यदि वही कारण होता तो उसको निमित्त क्यों कहते, उसको उपादान कह देते, उसका निमित्त भिन्न नाम पड़ा है तो उस कुछ अलग बात है। दूसरा प्रश्न था शुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय हो यह समझ में नहीं आता, तथा यदि कहा जाए कि अशुद्ध उपादान के कारण से अशुद्ध पर्याय हुई तो द्रव्य अशुद्ध नहीं हो जाएगा। देखो द्रव्य को कहने की भी अपेक्षाएं होती है। हमने कहा कोई मिथ्यादृष्टि जीव करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उस जीव को हम क्या कहेंगे, पहले हम उसको मिथ्यादृष्टि कहते थे, अब क्या कहेंगे, सम्यक दृष्टि। पूरे द्रव्य को कहा कि अकेले एक पर्याय को कहा, पर्याय का नाम तो सम्यक दर्शन है, हमने उस जीव को सम्यक दृष्टि कहा, उसी जीव को पहले हम मिथ्या दृष्टि कह रहे थे, तो पूरे द्रव्य का नाम दिया ना हमने, पर्याय की ओर से हमने पूरे द्रव्य को क्या कह दिया, यह मिथ्या दृष्टि है। फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करा तो पर्याय की ओर से उस द्रव्य को नाम क्या दिया, सम्यक दृष्टि। तो पर्याय को अभेद करके हम उस द्रव्य को ही कह रहे हैं, द्रव्य और पर्याय सर्वथा भेद है ही नहीं, हमने देखे ना भेदा भेद है। वस्तु रूप से देखा जाए तो एक वस्तु है, परंतु उसे में हम किसी अपेक्षा से भेद भी करते हैं, वस्तु स्वरूप ख्याल में आए इसलिए। तो यहां ये कहते हैं शुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय, तो द्रव्य क्या सदाकाल शुद्ध है, यदि हम पर्याय की ओर से कहेंगे तो उसको अशुद्ध भी कहेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी बताते हैं, तू अपने को मैं शुद्ध हूं बुद्ध हूं मानता है तो द्रव्य तो शुद्धा शुद्ध पर्यायों का पिंड है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्यों कहा, क्योंकि जो अनादि से लेकर अनंत काल तक जो पर्यायों का पिंड उसी को तो हम द्रव्य कहते हैं, गुण पर्याय द्रव्यम उसी को तो कहा हमने, और ये क्या मानता है, मैं शुद्ध हूं, तो शुद्ध किस अपेक्षा से कहते, पर्यायों को गौण करके जो सामान्य की जब हम मुख्यता करते हैं, जिसको त्रिकाली एक रूप सामान्य परम पारिणामिक भाव की जब कहते तब हम कहेंगे वो शुद्ध द्रव्य है। कहने में आते पर्याय से परिणमित होता है, भेद नहीं किया अभेद किया है। अभी द्रव्य और पर्याय में भेद करना है क्योंकि पर्याय से लक्ष्य छुड़ाना है। प्रयोजन क्या है, पर्याय में जो हम बुद्धि है, पर्याय का जो लक्ष्य है बारंबार, उसका लक्ष्य छुड़ाने के लिए क्या कहते हैं, पर्याय स्वयं अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, यथा योग्य होने वाली है वो होगी, तब कहेंगे पर्याय के षटकारक पर्याय में स्वतंत्र है, भले वो विभाव रूप पर्याय हो या स्वभाव रूप पर्याय हो। जब अध्यात्म में बात आती है, अध्यात्म में समय सार की बात आती है, तो समय सार में तो विभाव पर्याय को अपना गिना ही नहीं है, वो तो अपनी है ही नहीं, पुद्गल की है कह दिया। बारंबार आती है ना विव्याप्य व्यापक बात चल रही है आपका, तो वहां तो जो निर्मल परिणति है कौन सी, वितराग परिणति, ज्ञान परिणति, श्रद्धा की जो सम्यक परिणति, उसको तो उसको व्याप्य कहा जीव का, और भगवान आत्मा उसका व्यापक कहा, और राग की पर्याय वो पुद्गल की है, क्यों जीव में नहीं होती, वो अपेक्षा वहां नहीं लेते। हाँ बोलो। देखो जैसे आप चारित्र गुण में स्वभाव और विभाव दोनों पर्याय एट अ टाइम देख रहे हैं कि वितरागता का अंश भी है वहां पर, सम्यक चारित्र हुआ है फिर भी राग है वहां पर, देवशास्त्र गुरु का राग, शास्त्र लिखने का राग, समझाने का राग, उसको हम विभाव कहेंगे, मिथ्या नहीं कहेंगे पर विभाव कहेंगे। तो चारित्र गुण में ये जो दो पढ़ते हैं ना, दो धारा एक साथ चलती है, कौन सी, स्वभाव रूप वितराग धारा और ये विभाव रूप सराग धारा चारित्र गुण में। परंतु कोई समझेगा कि श्रद्धा गुण में भी ये सम्यक तो भी है और मिथ्या तो भी, ऐसी धारा श्रद्धा गुण में नहीं चलती, श्रद्धा में नहीं चलती है, ज्ञानी के भी दो धारा श्रद्धा गुण के पर्याय में नहीं, हम यहाँ श्रद्धा की बात करें, ये तो ज्ञानी के साधक दशा में तो स्वभाव यानी सराग धारा वितराग धारा चलती है, दोनों ही धारा एट ए टाइम चलती है, वैसे ज्ञान गुण में भी चलती है, सम्यक ज्ञान भी है और मिथ्या ज्ञान भी है, सम्यक श्रद्धा भी है मिथ्या श्रद्धा भी, ऐसा नहीं होता, ख्याल में आती बात, चारित्र गुण में जरूर होता है, क्योंकि जीव को सम्यक दर्शन होने पर भी जितने कषाय चौकड़ी का अभाव है उतनी हम वितरागता कहेंगे, तो वितरागता बढ़ती जाती है ना। चौथे गुणस्थान में कौन सा चारित्र है, चौथे गुणस्थान के चारित्र का नाम क्या है, स्वरूपाचरण चारित्र, पांचवें गुणस्थान में गया तो देश चारित्र, छठे सातवें में सकल चारित्र, और ग्यारहवें के ऊपर यथाख्यात चारित्र, पूर्ण वितरागता, यानी उस वितरागता में स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमशः उसमें वृद्धि होती है वितरागता में, और राग भाव घटते चले जाते हैं। जैसे ये चारित्र गुण में होता है वैसे श्रद्धा गुण में क्या होता है, सम्यक दर्शन होते ही सम्यक परिणमन चालू हो गया, वहां थोड़ी मिथ्या श्रद्धा भी है और थोड़ी सम्यक श्रद्धा भी है, ऐसा नहीं होता, ख्याल में आते हैं। तो ये भले स्वभाव विभाव है परंतु समय सार की जो अपेक्षा है, ये जो विभाव रूप परिणमन चल रहा है राग भाव, उसको अपना है ही नहीं कह दिया। जैसे शरीर में रोग होता है हम क्या कहने, ये शरीर का अंग ही नहीं, चलो इसको निकाल बाहर कर दो, पहले श्रद्धा में लेते ना कि ये मेरा अंग नहीं है, ये जो कुछ कैंसर की गांठ आई है फोड़ा आया है ये मेरा स्वरूप मेरा, इन्हें हमने शरीर को मेरा मान लिया, तो क्या कहते हैं डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, जो कुछ नॉर्मल है उससे कुछ विपरीत हुआ है तो हम उसका इलाज भी कहते हैं। तो पहले श्रद्धा में आए ना कि ये मेरा अंग नहीं है, ये कुछ गलत बात है, यहाँ इतना कोई कैंसर की गांठ आ गई है तो ये तो रोग का लक्षण है, ये मेरा नहीं है, तो हम उसको निकाल बाहर करते, तो पहले उसने जाना भी और श्रद्धा में भी लिया। ऐसे ही यहाँ श्रद्धा में क्या लेना है, ये जो राग भाव है, धर्मी की बात चल रही ना, धर्मी राग को कैसे जान रहा है, ये मेरा है ही नहीं है पुद्गल का है, और उसके अपना तो अहम भाव किस में किया उसने, अपनी निर्मल परिणति में, उसके साथ उसको अभेद बताया, ये बात यहाँ आ रही है। देखो 103 पृष्ठ पर देखो, अज्ञानी अवस्था में जीव को राग का कर्ता कहो तो कहो, कहो तो कहो क्यों कहा, कहो तो कहो यानी किसी अपेक्षा कह भी सकते हैं, ये बात कहो तो कहो, परंतु सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के राग भावों का स्वामीपना नहीं होता, क्यों? उन्होंने अपने को ज्ञानमय अनुभव कर लिया है। आगम से पढ़ पढ़ कर मैं ज्ञान रूप हूं ऐसा नहीं कह रहे, मैं स्वयं ज्ञान रूप हूं ऐसा अनुभव उनको हुआ है और वैसी प्रतीति हर समय उनके वर्तती है। तो उन्हीं के पर्याय में जो राग भाव उत्पन्न हो रहे हैं, परिणाम की अपेक्षा उनके है। प्रवचन सार में कहेंगे वो ज्ञानी के है कर्तृने से, समय सार में क्या कह रहे हैं, वही आचार्य, ये तो अच्छा हुआ हमारा सौभाग्य, एक ही आचार्यों ने ये 5 परमागम लिखे हैं और अलग हर जगह अलग अलग अपेक्षा। नहीं तो हमें तो कुछ कारण ही लगता है वाद विवाद करने के लिए, और एक कोई है मत तो उसके 2 खंड करने के लिए। तो हमारा सौभाग्य है कि एक ही कुंदकुंदा आचार्य ने ये हमी पे का ऐसा नहीं। उसका अर्थ क्या है, राग उनका गेय है परंतु गेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपने से होता है। तो यहाँ कहते हैं उनके स्वामीपना नहीं है, अपने ज्ञातापना में उसे अहम बुद्धि होती। किसको? धर्मी की बात चल रही, ज्ञानी की बात चल रही। अहम यानी मैं हूं, किसमें मैंपना स्थापित हुआ है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में, मैं ज्ञान मैं हूं, ऐसी ज्ञान में उनकी अहम बुद्धि स्थापित हुई है। वही मैं हूं ऐसी प्रतीति, ऐसा ज्ञान उनको चल रहा है। तथा आश्रव तत्व को वह अपने से भिन्न जानता है। कौन सा है आश्रव तत्व, किसको भिन्न जान रहे हैं बेटा? ज्ञानी आश्रव को भिन्न जानते हैं, नहीं क्या जानते हैं आपको पूछ रहे मैं? हाँ जोर से, आश्रव किसको कहा यहां पर? हाँ बोलो। हाँ रागादि भाव ज्ञानी को जो हो रहे हैं, अभी आश्रव है कि आश्रव से मुक्त हो गए? हाँ है। अज्ञानी को तो आश्रव बंद था, संवर निजरा तो थी नहीं, जब ज्ञानी हुआ तो आश्रव मिट गया क्या है? अभी अभी है। हाँ कोई विशिष्ट आश्रव रुक गया है, पहले कितने आश्रव थे? नाम मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग। अभी ज्ञानी हुआ, चौथे गुणस्थान में आया, तो कौन से आश्रव रह गए? हाँ मिथ्यात्व अभी नहीं रहा, फिर भी चौथे गुणस्थान वाला है, तो अविरति प्रमाद कषाय योग है उसके। तो जो ये अविरति प्रमाद कषाय योग है उसको वे जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? किस रूप से? पहले तो ये सभी थे ना, तो उनके जो कोई रागादि भाव थे उन सब में मैं यह हूँ ये मेरे है इसी भाव चल रहे थे। अभी ज्ञानी हुए मिथ्यात्व चला गया है, अब भी जो कोई यथा योग्य उनके रागादि परिणाम विद्यमान है उसको अपने से भिन्न जानते हैं। तो उनके राग का कर्तापना नहीं है, स्वामित्व नहीं है। ख्याल में आती है बात? क्यों यहाँ क्या लिखते देखो, आश्रव तत्व को वह अपने से भिन्न जानता है। मान्यता तो हो ही गई, जो राग भाव विद्यमान है, जो है उसकी बात चल रही है। इस कारण ज्ञानी को राग का अकर्ता कहते हैं। हम जहां तहां जाते हैं लोग क्या कहते हैं, हमें राग को घटाना चाहिए, हमें कर्म को हटाना चाहिए। सारी कोशिश किसकी चलती है? कर्म को कट करना है, हटाना है, और राग को कम करना है। राग को होते हुए अपने से भिन्न जानना है, ये मर्म है। क्या मर्म है? क्योंकि राग जो वर्तमान में है उसको क्या कमी करेंगे, जो हो चुका है भूतकाल में उसको क्या कम करेंगे, और जो अभी है ही नहीं है जो भविष्य में होने वाला है उसको क्या कम करेंगे? तो पहले में पहले मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा तो ज्ञानी की विचारधारा कैसे चलती? अभी तो ज्ञानी हुआ नहीं, उसके पहले से बात चलेगी, निर्णय की बात है ना। तो निर्णय में भी उसके ऐसे विचार चलेंगे कि ये जो उत्पन्न हुए है राग अपने पर्याय में जो है वो अपने से भिन्न है। पर्याय में हो रहे राग और जो होते हुए राग को अपने से भिन्न जानता है मानता है, उसकी प्रतिधि भी चलती है, तो ये है राग। फिर जो राग उत्पन्न होगी ना नए, पहले में पहले राग से नाता छूट जाता है, फिर बाद में जो कोई राग उत्पन्न हो गए वो पहले जैसे नहीं होगे। मिथ्यात्व दशा में जैसे राग आदि उत्पन्न होते अनंत अनुबंधी प्रकार के, अब उसने राग से स्वामित्व छूट गया उसका, अपने को ज्ञान में अनुभव कर रहा है, अपने में होते होने वाले राग को अपने से भिन्न जान लिया उसने। अब इसके आगे जो राग उत्पन्न होगा वो अनंतानुबंधी वाला होगा ही नहीं। वहां भी जितने राग हो रहे, रागादि भाव है, वहां पर भी सम्यक दृष्टि के भी, अविरति के भी परिणाम है, अन्य भी राग भाव है, बाल बच्चों के प्रति जो कोई उसके प्रीति है, प्रीति के परिणाम है, देव गुरु शास्त्र के प्रति जो अहोभाव है, वो सभी रागादि है। परंतु अभी वो कैसा जान रहा है, अपने से भिन्न जान रहा है। ख्याल में आती कुछ बातें? पहले अज्ञानी राग अपना कार्य है ऐसा मानता था, राग का मैं करता हूं मानता था, ज्ञानी होने पर राग का अकर्ता हो गया, यानी वो राग करता ही नहीं, नहीं राग होते हैं, होते हैं। पहले क्या मान रहा था, मैं करता हूं, अब उसको क्या ख्याल में आ रहा है, राग हो रहे हैं और वे मुझसे भिन्न हैं, क्योंकि उनको जानने वाला मैं हूं, करने वाला मैं नहीं। ये ज्ञानी अज्ञानी में अंतर है, क्योंकि ज्ञानी भी पूजा दान पूजा आदि करते हुए दिखाई देता है, अज्ञानी और ज्ञानी दोनों वही क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी उनकी जो प्रतीति है, श्रद्धा है, जो अनुभव चल रहा है, उसमें महान अंतर है। देखो आगे देखते हैं,
राग द्वेष दोनों,
राग द्वेष दोनों है। यहाँ राग और द्वेष मिलकर राग कहने की पद्धति है। ज्ञानी के द्वेष है कि मिट गया, अभी चौथे गुणस्थान वाला है, कहाँ तक हो गए द्वेष भाव? हाँ द्वेष, द्वेष हमने लोभ को राग में लिया ना, तो द्वेष में किसको लिया? हाँ राग में क्या क्या लिया और द्वेष में बोलो, क्रोध और माया को, जरा कॉम्बिनेशन बदल दो। हाँ। क्रोध और मान द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है। तो क्रोध और मान कहां तक है, कौन से गुणस्थान तक? नौवे तक है। हाँ परंतु वो कैसे है, अबुद्धिपूर्वक, जो उस जीव के भी ख्याल में नहीं आ रहे। देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां अज्ञानी को उसके विभाव का कर्ता कहा है, क्या कहा? अज्ञानी को विभाव का कर्ता कहा है, परंतु परद्रव्य का कर्ता तो कोई भी नहीं हो सकता। यहां ऐसा हमेशा शास्त्र में आता है, अज्ञानी को राग का कर्ता कहो तो कहो, कहो तो कहे ने विभाव का कर्ता उसको किस अपेक्षा से कह भी सकते हैं, परंतु परद्रव्य का कर्ता, कर्म का कर्ता न ज्ञानी है न अज्ञानी है। ख्याल में आई बात? क्या कहा? हाँ पर का के राग का, हाँ राग का कर्ता अज्ञानी को कहो तो कहो, यानी किसी अपेक्षा कह भी सकते हैं, और वो मान रहा है अपने को कर्ता, परंतु ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कर्म का कर्ता तीन काल में नहीं हो सकता, पर वस्तु का कर्ता तीन काल में नहीं हो सकता, रोटी का कर्ता तीन काल में नहीं हो सकता, ये घड़े का बनाने वाला तीन काल में नहीं हो सकता, मंदिर की रचना करने वाला तीन काल में नहीं हो सकता, न ज्ञानी हो सकता है न अज्ञानी हो सकता है। शास्त्र में कर्ता कर्म संबंधी जितनी चर्चा की है उतनी भोक्ता भोग्य संबंधी नहीं है। उसका कारण यही है, जहां कर्ता बुद्धि होती है वहां भोक्ता बुद्धि भी होती ही है। परद्रव्यों को जानते हुए ये क्या मान रहा है, मैं इनका भोगता हूं। लड्डू के मीठेपन का ज्ञान हो रहा है और मानता क्या है, मैं लड्डू का भोग करता हूं, उसका स्वाद लेता हूं। ऐसे सभी इंद्रियों के बारे में समझना, इंद्रियों के द्वारा वो विषयों को जान रहा है परंतु मानता क्या है, मैं इसको भोग रहा हूं, ये उसकी भोक्ता बुद्धि है। जीव परद्रव्य का कर्ता नहीं है इस सिद्धांत के द्वारा वह परद्रव्य का भोक्ता भी नहीं है, परद्रव्य उसका भोग्य नहीं है, यह बात भी सिद्ध हो जाती है। यानी उसका ज्ञान और ज्ञेय संबंध है, ज्ञेय ज्ञाय कहो हम परद्रव्य की तरफ से कथन करना है, परंतु उसका कोई कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं। ये तो हमने कर्ता कारक की बात देखी है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा कारक नाम क्या है उसका, कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहता है हमने, वो बता रहे ना, हाँ बोलो, कर्म कारक किसे कहना? मैं आप ही को पूछ रही। हाँ हाँ, कर्ता जिस परिणाम को करता है उसको हम क्या कहेंगे? कर्म कारक। देखो अभी हम पढ़ेंगे ये कर्म शब्द का अर्थ क्या है। हाँ? कार्य किसका? कर्ता का कार्य। हम यहां देखते हैं, देखो कर्ता कारक के बाद अब कर्म कारक की चर्चा करेंगे। कर्म शब्द से उलझन में पड़ सकते हैं, अनेक भिन्न भिन्न अर्थों में उसका प्रयोग होता है। जनसामान्य तो यानी लौकिक में क्या कहते हैं? अपना अपना कर्म करता रहो, करते रहो, फल की अपेक्षा मत रखो, कहते हैं ना। अन्य मतियों में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा मत करो, अपना अपना कर्म करते रहो। ये कर्म क्या होते हैं? कर्म क्या होते हैं? संसारी कर्म है ऐसा मानते हैं। हाँ, तो जनसामान्य तो उसका अर्थ जाने बिना ही, क्या कहते, अर्थ जाने बिना ही सरेआम उसका प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। जैसे हमें कर्म करते रहना चाहिए परंतु उसके फल की अपेक्षा इच्छा नहीं करनी चाहिए। घर गृहस्थी धंधा व्यापार नीति और सदाचार से करना, दूसरों को मदद करना, इसी को वे कर्म करना कहते हैं। ऐसी लौकिक में बात चलती है। पर पदार्थों का मैं करता हूं, शरीर आदि की क्रिया मेरा कर्म है, ऐसी मान्यता तो महान मिथ्यात्व है। और ये शरीर का कार्य करते हुए ऐसे ही कर्म करना चाहिए, ऐसा वो बताते हैं। अन्य मति की या लौकिक जनों की बात है। परंतु इसी प्रकार के उपदेश के डोस लोग एक दूसरे को पिलाते रहते हैं और सुनने वालों को भी वे मीठे लगते हैं। क्योंकि ऐसे जो कोई वक्ता होते हैं, कोई अपने नाम से कोई नए नए पंथ शुरू करते हैं, तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो लोगों को अच्छी लगे, समाज को अच्छी लगे, ऐसी कहते हैं। जब हम महाराष्ट्र में किसी किसी जगह जाते हैं तो लोग हमको उपदेश देते हैं, जरा समाज को रुचे ऐसी बातें करो, क्या करो, समाज को रुचे ऐसी बातें करो, आपको समाज में रहना है क्यों? तो हम समाज से रहित कब जन्मेंगे? लोग क्या कहते, हमें समाज में रहना है तो थोड़ी बातें हमें ऐसी करनी पड़ती है। कैसी बातें? जो आगम के विरुद्ध है, ऐसी बातें हमें क्या करें? हम पराधीन है, हमें समाज में रहना है। ऐसी एक बहन मिली थी तो उनको कहा, आप समाज में नहीं हो, ऐसे मनुष्य जन्म कब पाओगी? बिना समाज वाला मनुष्य जन्म मिलना चाहिए जहां हम सही बात कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता ना ऐसी बातें। तो समाज के डर से या कोई अन्य आशाओं से भ्रम चालू रखना या गलत बातें अंगीकार करना या पता चला ये गलत है तभी उसी को करते रहना, ये तो महान मिथ्यात्व है। देखो शास्त्र में कर्म शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। लौकिक में क्या कहते वो तो देख लिया, शास्त्रों में भी शब्द कर्म शब्द आता है। जैसे ज्ञानावरणादि जो आठ कर्म है उसके लिए भी कर्म कहते हैं। जो भाव कर्म है, कौन से भाव कर्म? मोह राग द्वेष, उसको भी कर्म कहेंगे। और जो नो कर्म है, शरीर मन वाणी आदि, उसको नो कर्म कहते हैं। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ऐसे अलग अलग शब्द शास्त्र में भी आते हैं। और कर्म यानी कार्य, कार्य के अर्थ में भी कर्म शब्द प्रयुक्त तो होता है। तो वहां कार्य को यानी पर्याय को कर्म कहेंगे। प्रत्येक द्रव्य या गुण की पर्याय उसका कर्म है। तो अभी हमारे जो कर्म शब्द से हम कौन सी बातें यहां समझना चाहते हैं? कर्ता कर्म जब कहते हैं तो कार्य को पर्याय को यहां कर्म कहा है। देखो कर्म कारक की चर्चा में यह चौथे प्रकार का अर्थ समझना चाहिए। पहले हम इतना ही कहते थे कि द्रव्य कर्ता यानी त्रिकाली उपादान है और पर्याय उसका कर्म है। अब उपादान के भेद प्रभेद जानने के बाद अब तुम्हारे ख्याल में आएगा कि तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण कर्ता है और पर्याय उसका कर्म है। कर्ता किसको कहा? चार हमने कारण देखे थे, उसमें से तत्समय के पर्याय की योग्यता रूप जो क्षणिक उपादान कारण है उसको कर्ता कहा, और जो वो पर्याय हुई उसको कर्म कहा। इसी प्रकार छहों कारक उस विशिष्ट पर्याय पर घटित होते हैं। पहले हमने छह कारक द्रव्य पर घटाए थे, अब इनको पर्याय पर घटित कर रहे हैं। ये प्रश्न ऐसा ही था ना, द्रव्य के भी षटकारक बता रहे हैं और पर्याय को भी। जब हमें द्रव्य और पर्याय अभेद करके बताना है तो हम कहेंगे ये द्रव्य ही स्वयं षटकारक रूप होकर परिणमित होता है, उत्पन्न होता है। कहा प्रवचन सार की 16वीं गाथा में उसको स्वयंभू कहा है, द्रव्य स्वयं षटकारक रूप से परिणमित होता हुआ उत्पन्न। देखो यहां लिखा है प्रवचन सार में 16वीं गाथा में लिखा है, वहां वो दृष्टांत भी दिया है मिट्टी का, और आगे कहते हैं द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए स्वयं ही छह कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है, उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। द्रव्य परिपूर्ण है और अपने छह कारक रूप होकर परिणमित होता है, अपनी पर्याय रूप से करता है, इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। कोई देव गुरु और शास्त्र उनके कारण मेरा समय दर्शन हो जाएगा, कोई गुरु आकर मुझे समझाएगा, कोई अन्य मेरा कार्य कर देगा, ऐसी पराधीन दृष्टि नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। किसको? केवल ज्ञान के इच्छुक, यानी जो सारे मुमुक्षु कहलाते हैं ना हम, क्या अर्थ है उसका? मोक्ष की इच्छा रखने वालों को। देखो शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही छह कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। हम कहेंगे सम्यक दर्शन के लिए तो कोई मदद करता होगा, परंतु जब केवल ज्ञान होता है तो शुद्धोपयोग में लीन है। तो शुद्धोपयोग में लीन है, पहले तो मतिशुद्ध ज्ञान वाले हैं और वो स्वयं ही केवल ज्ञान रूप से परिणमित होते हैं। तो आत्मा स्वयं ही केवल ज्ञान रूप पर्याय से परिणमित होता है। वह आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही करता है। स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने के केवल ज्ञान कर्म है, अथवा केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है। देखो जब द्रव्य पर षटकारक कहते हैं तो पर्याय भी नहीं कहा, आत्मा को ही कर्म कहा। क्या कहते हैं, समझ में आई कुछ बात? नहीं समझे? दोबारा। हम जब द्रव्य के षटकारक कहते हैं, पर्याय उसमें अभिन्न कर दी, अब यहां केवल ज्ञान पर घटित कर रहे प्रवचन सार में, तो आत्मा स्वयं केवल ज्ञान रूप से परिणमित होता है, यानी कर्ता कारक स्वयं आत्मा है। किस रूप से परिणमित हुआ? केवल ज्ञान रूप से। अभी केवल ज्ञान को आत्मा के साथ अभिन्न कर दो, यदि भेद करेंगे पर्याय का तो क्या कहेंगे? केवल ज्ञान उसका कर्म है। अब यहां द्रव्य के साथ केवल ज्ञान को अभिन्न करके क्या बता रहे? आत्मा स्वयं ही कर्म है। कुछ फर्क ख्याल में आया, अंतर? पहले केवल ज्ञान को कर्म कहा था, अब किसको कह रहे? आत्मा को ही कर्म कह रहे। क्यों? आत्मा और केवल ज्ञान अभेद है, अभिन्न है। फिर पढ़ती हूं मैं इस वाक्य को। पहले क्या कहा था? आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही करता है, क्योंकि उसने स्वयं कर्ता होकर केवल ज्ञान को उत्पन्न किया है। अब क्या कहते हैं? स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने से केवल ज्ञान कर्म है। अनंत शक्ति वाला केवल ज्ञान की पर्याय उसने प्राप्त की आत्मा ने, इसलिए केवल ज्ञान को कर्म कहा। यह एक अपेक्षा। अथवा क्या कहते हैं? केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से, अभिन्न ने एकाकार है, उस एक समय के लिए तादात्म्य संबंध है, तो आत्मा और केवल ज्ञान भिन्न चीजें नहीं है। आत्मा स्वयं केवल ज्ञान स्वरूप है उस समय, तो अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है। किसको कर्म कहा? आत्मा को। आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म, यहां पर्याय का नाम नहीं लिया, क्योंकि पर्याय और द्रव्य एक वस्तु है। जब द्रव्य के षटकारक कहेंगे तो द्रव्य स्वयं ही कर्ता, द्रव्य स्वयं ही कर्म। द्रव्य को कर्म क्यों कहा? विशिष्ट पर्याय से युक्त द्रव्य है, इसलिए द्रव्य को ही कर्म कहा। द्रव्य को ही करण कहेंगे, द्रव्य को ही संप्रदान अपादान सभी एक द्रव्य को ही कहेंगे। आगे लिखते देखो, अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन। साधन क्या है? अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव है वहां पर। ये ऐसा स्वभाव होने से स्वभाव को ही यहां करण कहा। हमें कोई साधन जुटाने हैं तो हम यहां वहां ढूंढते हैं। ये अनंत शक्ति वाला जो स्वभाव है वो कहां से लाना है? बोलो। केवल ज्ञान होने के लिए जो अनंत स्वभाव से परिणमन करने की जो शक्ति है वो कहां से लाएंगे हम? वो है हमारे पास, वो कहीं बहार से लाने नहीं है। हम पराधीन है ही नहीं, करने वाले भी हम स्वयं, और पर्याय भी हमारे में से ही अपने ही स्वयं के कारण उत्पन्न होने वाले, और उसका साधन करण भी हमारे, हम स्वयं है, हमारा स्वभाव ही है। इसलिए आत्मा स्वयं ही करण है। केवल ज्ञान किसको देता है? लोकालोक को देता है कि नहीं? केवल ज्ञान प्रकट होके कहां फैल जाता है? लोकालोक में ना। अपने को ही केवल ज्ञान देता है। ये क्या फायदा ज्ञान का? कल किसी ने कहा था, हमने आत्म ये इतनी पढ़ाई की, क्या फायदा? किसको देना है ज्ञान? अपने को ही। हम फायदा किसमें गिनते हैं? किसी ज्ञान का फायदा किसमें गिनते हैं? हम इतना एक घंटा यहां बिताया, उसके बदले हम वहां दुकान में बैठते, हमारी प्रैक्टिस करते मेडिकल, तो कितना पैसा मिल जाता, किसमें गिनते हम? तो यहां कहते अपने को ही केवल ज्ञान देता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही संप्रदान है। अब कौन सी बात रही? अपादान। यहां कहते अपने में से, अपने में से मति श्रुतादि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। कौन? आत्मा स्वयं। मतिशुद्ध ज्ञान के जो पर्याय चल रही थी उसका व्यय करके केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न करता है आत्मा स्वयं। इसलिए और स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा ध्रुव रहता है। ध्रुव वस्तु को हमने अपादान कहा था, तो एक पर्याय का व्यय, दूसरे पर्याय का उत्पाद और स्वयं ध्रुव। तो आत्मा स्वयं ही ध्रुव वस्तु है, इसलिए आत्मा को ही अपादान कहा। अपने में से अर्थात अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। जो आधार रूप जो वस्तु है उसको अधिकरण कहते हैं। इस प्रकार स्वयं, कौन स्वयं? आत्मा स्वयं छह कारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयं भू कहलाता है। भू किसको कहना? जो होता है। हम जब आत्मा द्रव्य को कहेंगे तो द्रव्य तो अनादि अनंत है, परंतु यहां किसकी अपेक्षा से बात चल रही है? पर्याय की ओर से बात करें। आत्मा में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो ये पर्याय रूप हो गए ना। जैसे हम सम्यक दर्शन पर हमने घटित किया था, मिथ्या दृष्टि जीव था, वह अभी सम्यक दृष्टि हुआ, तो सम्यक दर्शन जो प्रकट पर्याय हुई उसकी, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि, तो ये आत्मा स्वयंभू है वहां पर, वो स्वयं उस पर्याय रूप से परिणमित हुआ है। केवल ज्ञान हुआ तो वो स्वयंभू है, अन्य मति मानते हुए ऐसा स्वयंभू कुछ नहीं है। विशिष्ट पर्याय रूप से होना, वो पर्याय उसी समय उसके अपने कारण उत्पन्न हुई है। द्रव्य स्वयं षटकारक रूप होकर विशिष्ट पर्याय रूप से परिणमित हो जाता है, इसलिए द्रव्य को स्वयंभू कहा। किस अपेक्षा? पर्याय की अपेक्षा। परंतु जब हम द्रव्य अनादि अनंत कहते हैं तब उसको स्वयंभू नहीं कहेंगे, क्योंकि स्वभाव जो है, गुण जो है, वो अनादि से है, वे स्वयंभू नहीं कहलाते। स्वयंभू का अर्थ क्या है? आदि है ना उसको, हुआ है वो कार्य। जब हुआ तो कार्य रूप से परिणत द्रव्य को हम स्वयंभू कहेंगे, इसलिए यहां कारक कहेंगे। स्वभाव के लिए कारक की अपेक्षा नहीं है। कारण किस में होते? कार्य में होते। स्वभाव किसी का कार्य नहीं होता, स्वभाव तो स्वयं सिद्ध है, अनादि अनंत है। हमने 5 बिंदु देखे थे स्वभाव के, किसको याद है? हाँ बोलो। बहुत अच्छा। स्वभाव जो होता है वो स्वयं सिद्ध होता है, अनादि अनंत होता है, परिपूर्ण होता है, अमर्यादित यानी असीम होता है, और असहाय यानी किसी निमित्त से नहीं होता। वो तो है। जो होती वो तो पर्याय होती है, जो सादी उसको हम कहेंगे, एक समय के लिए होती है। यहाँ जो स्वयंभू कहा है वो विशिष्ट पर्याय से युक्त द्रव्य को यहाँ स्वयंभू कहा है, और यहाँ केवल ज्ञान का उदाहरण लिया उनमें। प्रवचन सार तो पढ़ने योग्य है इतने उसमें, और जब पढ़ना है ना तो जयसेन आचार्य की टीका पढ़िए, अमरचंद्राचार्य की टीका पढ़िए। जब हमने पहली बार पढ़ा था तो पहले हिंदी में पढ़ा पूरा, तो इतना आनंद आया। फिर जयसेन आचार्य की संस्कृत टीका लेते हुए पढ़ा, फिर और बढ़िया लगा, फिर अमरचंद्राचार्य की संस्कृत टीका में से पढ़ा, तो गजब का ग्रंथ है। अब हम आगे पढ़ेंगे, देखो।
पहला यही ग्रंथ रचा गया
जो कुछ है उसमें, तो द्रव्य गुण पर्यायों की ज्ञान प्रधान शैली से पूरा वर्णन है। जब ज्ञान से हम पदार्थों को निश्चित करते हैं, फिर निश्चय व्यवहार करके उसमें मुख्यता की अपेक्षा समय सार की बात की है, वहां दृष्टि की अपेक्षा है, और यहाँ ज्ञान की प्रधानता है। दोनों ही कार्यकारी है, सभी कार्यकारी, तभी तो लिखे ना, बिना कार्य के फजूल के टाइम पास करते थे क्या हुए? अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो पहले ये 104 पृष्ठ पर चौथी लाइन, ये जो हमने द्रव्य पर 6 कारक घटाए थे ऐसे ही पर्याय पर भी घटित करते हैं। पहले हमने 6 कारक द्रव्य पर घटाए थे, अब इनको पर्याय पर घटित कर रहे हैं। पर्याय स्वयं ही करता, पहले करता किसको कहा था? द्रव्य को, और पर्याय रूप से परिणमित द्रव्य को ही कर्म कहा था। अब हम द्रव्य और पर्याय को भिन्न दर्शाने के लिए, पर्याय की स्वतंत्रता बताने के लिए पर्याय पर घटित कर रहे, तो पर्याय स्वयं ही करता, पर्याय स्वयं ही कर्म, पर्याय स्वयं ही करण, पर्याय स्वयं ही संप्रदान, पर्याय स्वयं ही अपादान, और पर्याय स्वयं ही अधिकरण है। अब इसे आत्मा पर घटाते हैं। द्रव्य और पर्याय अभेद करके 6 कारक इस प्रकार है। हमने तो अन्य वस्तुओं पर घटित किए, हमें तो प्रयोजन है अपने से, तो द्रव्य और पर्याय को अभेद करके घटित करेंगे तो आत्मा को ही कर्ता, आत्मा को ही कर्म कहेंगे, जो अभी हमने प्रवचन सार में से पढ़ा। आत्मा स्वयं ही अपने निर्मल शुद्ध पर्याय का कर्ता है, शुद्ध पर्याय उसका कर्म है, ये तो यहाँ लिख दिया है, परंतु इसके बदले शुद्ध पर्याय से परिणत आत्मा ही स्वयं कर्म है, ऐसा भी हम यहाँ जोड़ सकते हैं। आत्मा ही उसका साधन अर्थात करण है, स्वयं को ही शुद्धता का दान देता है इसलिए आत्मा संप्रदान, स्वयं में से देता है इसलिए आत्मा अपादान, स्वयं के आधार से देता है इसलिए आत्मा ही अधिकरण है। यह हमने आत्मा यानी द्रव्य और पर्याय को अभेद करके बताए, अब पर्याय के भिन्न बता रहे। आत्मा के शुद्ध पर्याय के 6 कारक इस प्रकार है। शुद्ध पर्याय स्वयं करता, शुद्ध पर्याय स्वयं कर्म, शुद्धता ही उसका साधन है इसलिए शुद्ध पर्याय करण, अपने को ही शुद्धता का दान देने से शुद्ध पर्याय संप्रदान, स्वयं में से शुद्धता प्रकट होने से शुद्धता ही अपादान, शुद्ध पर्याय ही अपादान, और स्वयं के आधार से शुद्ध होने से शुद्ध पर्याय अधिकरण है। ये सारी बातें समझने पर, इसका ज्ञान होने पर, दृष्टि पर पदार्थों और पर्यायों से हटकर क्यों हटती है? अरे पर की तो हम कुछ करते ही नहीं, पर द्रव्य जो है वो अपने अपने पर्यायों के वो स्वयं षटकारक होकर परिणमित हो रहे हैं, अपने द्रव्य में ही वो स्वयं अपनी शक्ति से संपदा से परिपूर्ण है, वह स्वयं ही अपने यथा समय अपने अपनी पर्याय रूप से परिणमित होता है, तो ना हमें परद्रव्यों में कुछ करना है, हम कर ही नहीं सकते हैं, और ना ही अपने पर्यायों को हेरा फेरी करके कुछ जल्दी लाना है, कुछ मिटाना है, कुछ लाना है, कुछ चिंता ही रहेगी नहीं, क्योंकि द्रव्य के पर्याय के सभी षटकारक स्वतंत्र हैं। तो परपदार्थ और पर्यायों से दृष्टि हटकर स्वतरफ केंद्रित हो जाती है, यानी मैं कौन हूँ यह अपनत्व जो है वो अपने में, वो दृष्टि और ज्ञान भी केंद्रित हो जाते हैं। और ज्ञानानंद स्वभाव को जानते रहने से पर्याय में वीतरागता और आनंद की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय क्या है, ये उपाय है। हम जो जो यहाँ सिद्धांत सीखेंगे, बोले वो अभाव वाला हो, निमित्त उपादान का हो, अभी तो हम ये कारक देख रहे हैं, कोई भी क्रमबद्ध पर्याय हो, निश्चय व्यवहार हो, ये सारा अपने को अपनी ओर कैसे लाना है, इस पद्धति से इसका अभ्यास चिंतन होना चाहिए। क्योंकि शब्द तो हम याद कर लेंगे, शब्द याद करने से कुछ नहीं, वो जो चिंतन धारा है वो अपने तक कैसे ले जाना, उसके तो विचार तो दिन में हम यहाँ एक घंटा पढ़ेंगे और ये विचारधारा तो 24 घंटे चलेगी। और ये पद्धति अपना एक बार हमें ये ट्रिक पता चल जाए कि कोई भी सिद्धांत अपने पर कैसे लागू हो जाए, तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे हमें ऐसा आंखें बंद करके बैठना है और शुद्धात्मा शुद्धात्मा करना है, ये तो सहज रूप से होती है प्रक्रिया। ये आता है ना, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, क्या लिखा आगे, ताके मोह महांद नाही। ये मन माही यानी मन ही मन में ये विचारधारा चलती रहती है, और वहां तो जितना निर्णय की ओर हम बढ़ेंगे उतने मिथ्यात्व मंद होते चला जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे करण कारक पर। देखो दूसरा भी कारण शुद्ध पर्याय के बारे में प्रश्न था, परंतु ये आगे शक्ति के प्रकरण में आने वाली बात है, इसलिए इस प्रकरण को हम वहीं पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न लेके फिर बढ़ेंगे, एक आया था कल, केवली भगवान के समुद्घात होता है तो वह उनकी इच्छा से तो होता नहीं, वह समुद्घात आयु के अलावा अन्य तीन कर्मों की स्थिति को कम करने के लिए होता है, तो उस समुद्घात क्रिया से पुद्गल कर्मों में फेरबदल होता है, अतः यह बात सिद्ध होती है परमेय जीव कुछ कर सकता है और यह क्रिया सहज है। ये तो यही तो निमित्त नैमित्तिक बात चल रही है, यही तो छह कारकों की बात चल रही है, वहां जो कर्मों की स्थिति घटती है वो पुद्गल द्रव्य में स्वयं अपनी योग्यता से अपने षटकारक से होती है। जीव में जो कुछ प्रदेश फैलने रूप क्रिया होती है वो जीव में स्वयं अपने कारण स्वयं सहज होती है, वहां इच्छा का कोई कार्य ही नहीं है क्योंकि वो पूर्ण वितरागी भगवान है। ये कर्मों की अवस्थाएं और उसके कारण जो कुछ गमन आदि जो बातें होती है वो सहज अपने से होती है। जैसे जीव ने आयु कर्म बांध लिया, हम कर्मों की बात करेंगे, संसारी जीवों की बात करें, तो उसका भी मारणांतिक समुद्घात होता है। सुना है क्या होता है मारणांतिक समुद्घात? वापस आता है, वापस आने के बाद कहीं कहीं भी है और कहीं भी ऐसा है कि वहां तक उसके प्रदेश फैले रहते हैं। जैसे उस कोने में जन्म लेना है, यहां से कोई जीव मरता है तो कैसे जाएगा, कैसे भी आड़ा जाके वहां जाएगा, हम ऐसा कहेंगे यहां तक जाएगा फिर सीधे जाएगा फिर और एक मोड़ लेके वहां चलेगा, दो मोड़ से जाएगा, तो मरण के अंतर्मुहूर्त पहले उसके प्रदेश इसी डायरेक्शन में पूरे फैले रहते, फैले ही रहते। क्यों? कि उसके आयु कर्म का सद्भाव है और वहां उसका जन्म निश्चित है, तो उसकी इच्छा से जाता है क्या, वो समुद्घात करने की इच्छा से समुद्घात करते होंगे? नहीं, ये तो एक इंद्रियों में भी होते हैं और मेजॉरिटी के होते हैं समुद्घात। हम तो ऐसा समझते वहां जाके आया फिर वहां सब आनंद ही आनंद है तो हंसते हुए मरता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब मरण होता है तो ऐसे फैले ना, पहले ऐसा लिया हमने फिर ऐसा फिर ऐसा, तीन दंड हुए, एक ये दंड फिर मोड़, ये दूसरा दंड फिर मोड़, ये तीसरा दंड। तो मरण होता है तो क्या है, ये पहला दंड उठ जाता है और वो दंड दो दंड पहले समय में पड़े रहते हैं, फिर दूसरे समय में प्रदेश वहां तक जाते हैं, फिर एक दंड पड़ा रहता है, फिर तीसरे समय में वो और एक दंड, उसमें भी प्रदेश जहां जन्म लेना है वहां चले जाते हैं। ये सहज प्रक्रिया। तो इससे हमें ये नहीं सिद्ध करना कि देखो जीव पुद्गल में कुछ करता है कि नहीं है, या कर्म जो आयु कर्म है या अन्य कर्म है वो जीव को ले जाते हैं कि नहीं, नरकायु और नरक गति के जो कर्म हैं वो जीव को ले जाते हैं ना नरक में, क्या है? जीव अपनी योग्यता से जाता है और कर्म में उसका जो कुछ उसकी क्रिया उसके अपने में होती है। हाँ बोलो। हाँ, आपका कहना है जो समुद्घात जो होता है वहां क्या है, वो जानने की इच्छा होती तभी तो होता है, ऐसा नहीं है। किसी इच्छा के कारण समुद्घात नहीं होता। गुणस्थान विवेचन में यदि ऐसा लिखा है कि अंतर्मूर्त पहले उसको जानने की इच्छा होती कि मैं कहाँ जन्म लूंगा, बैठिए, ये इच्छा होती है तो एक इंद्रियों के होती होगी कि मैं कहाँ जन्म लूंगा देखो तो सही, होगी कि नहीं होगी? अनंत जीव तो एक इंद्रियों में पड़े हैं और उनमें अनंतों का समुद्घात होता है प्रति समय। ये पूरा लोकाकाश ना समुद्घात करने वाले जीवों के प्रदेशों से भरा पड़ा है, ट्रैफिक जाम है सब जगह। हाँ, ऐसी कोई इच्छा विच्छा नहीं होती और ना ही इच्छा से समुद्घात होता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो कहने की पद्धति कुछ है ऐसा, ये तो कुछ आगम का आधार नहीं इसके लिए, इच्छा से नहीं होता।
हर शरीर में इच्छा काम करती है, वो जो पुतला निकलता ना आदमी राज का, कि भाई मुझे कोई,
वो सहज होते हैं सब, ये इच्छा से होता है कहने की पद्धति है, ये इच्छा विच्छा से कुछ नहीं होता है, वो सहज होता है। वेदना समुद्घात है, मारणांतिक समुद्घात है, ये कुछ जो है बताए है ना, ये सहज वैसी प्रक्रिया होती है। अब आहार मुनिराज को इच्छा हो गई और आहारक और आहारक अंगोपांग कर्म ही नहीं बंधा है तो इच्छा के कारण होता है ऐसा भी कहना वो तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे कि कोई प्रश्न है इसमें? हाँ, बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ जो लिखा था ना, ये तो ये बात सिद्ध होती है जो निमित्तों को सिद्ध करना चाहते हैं वो ऐसे ऐसे आगम के ही वाक्य लेके समझाते हैं, तभी तो हमें ऐसा लगता है ना। देखो, समुद्घात हुआ तभी तो वहाँ कर्मों की स्थिति घट गई, तो समुद्घात के कारण घट गई कि नहीं घट गई? तो उनकी स्थिति घटने का समय और यहाँ समुद्घात करने का सहज स्वयं व जो परिणमन वो एक समय में होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय पूर्ता होता है, दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में उनकी अपनी अपनी पर्याय होती है। समय एक, उसको हमने एक नाम देखा था। हाँ, आपने तो बता दिया निमित्त नैमित्तिक संबंध दो भिन्न द्रव्यों की पर्याय में होता है, एक ही समय में दो भिन्न द्रव्यों की पर्याय हो रही है और उसको हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध नाम दिया, तो उसको एक नाम और दिया था। हाँ बोलो। काल प्रत्यासत्ति, एक ही समय एक है दोनों का, वो अपने अपने द्रव्यों में अपने कारण से होता है। बाहर से देखने वालों को ऐसा लगता है, भासित होता है कि इसके कारण वो कार्य हुआ। अभी तो उसी की चर्चा चल रही है ना हमारी, निमित्त उपादान से और षटकारक से तो हम यही सिद्ध करते आए हैं, आगे चलकर पांच समवायों में भी यही सिद्ध करेंगे कि वस्तु की और उसके प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता है। जीव स्वयं अपने जीव भाव रूप परिणमित होता है और पुद्गल अपने पुद्गल भाव रूप अजीव भाव रूप परिणमित होता है। कोई एक द्रव्य दूसरे का परिणमन कर ही नहीं सकता। कितने हरेक में अपनी उपादान शक्ति है, हरेक में अपना क्षणिक उपादान भी है, हरेक में अभी हम जो देख रहे हैं षटकारक से स्वयं परिणमित होते हैं, उसको वो स्वयं पूर्ण स्वयं सिद्ध है, सेल्फ सफिशियंट है, तो उसके पर के कोई पर आएगा निमित्त आएगा और मेरा कार्य कर देगा ये बात रहती ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहती। हमारी भी प्रत्येक समय की पर्याय हमारे स्वयं स्वतंत्रता से हो रही है। बाह्यतः निमित्त होते हैं, देखे जाते हैं, परंतु फिर भी निमित्त से कुछ भी नहीं होता। यदि शिक्षक ने पढ़ाया इसलिए वो विद्यार्थी ने फर्स्ट क्लास फर्स्ट नंबर आया तो सबके आना चाहिए थे। उसने तो शिक्षक ने 50 विद्यार्थियों को तो बराबर सिखाया था सबको, सिखाने में तो कोई पार्शियलिटी की थी क्या, इसको अच्छा मार्क्स मिल जाए इसको नहीं मिल जाए? तो हरेक ने अपने बुद्धि के अनुसार जाना, याद रखा और उसके नंबर आ गए। ऐसा ही निमित्त वहां पाया जाता है, परंतु कार्य जो है वो उपादान से होता है, क्षणिक उपादान से होता है, उसकी अपने निज शक्ति से होता है, अपने स्वयं के षटकारक से होता है, उसमें कोई परकारक की अपेक्षा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो जब ऐसा हमारा निर्णय हो जाए अपनी बुद्धि से, वहां कहते इसलिए मानना वो बात सही नहीं है, हम उस पर विचार करें क्या ये बात सच लगती है। अभी तक हम ऐसा सोचते थे और यहाँ आगम में कुछ अलग बात लिखी है और इतने आचार्यों ने अलग अलग पद्धति से समझाई है, तो हमारे ही समझने में कहीं भूल है। अपनी भूल कहाँ है, अपनी मान्यता कहाँ है, ये हमें टटोलना है। कोई दूसरा आके अपनी मान्यता सुधारने वाला नहीं है। हमें तो यहाँ तो कुछ अलग अलग सिद्धांत बताए जाते हैं, अब उसका एप्लीकेशन कैसे करना, वो विचारधारा में कैसे लेना, ये तो अपने हाथ की बात है। कोई प्रश्न है? अभी दो मिनट, एक मिनट रह गया, अभी समय तो हो गया अपना। ये नमस्कार करने ने कोई हाथ जोड़कर नमस्कार थोड़ा ही है, अपने शुद्धात्मा की याद करना है। अपने आप में चले जाओ, अपना शुद्धात्मा। शुद्धात्मा किसको कहते हैं? राग मिश्रित को थोड़ा ही शुद्ध भगवान आत्मा जब कहते हैं, जिसको त्रिकाली सामान्य कहेंगे, वो बात आगे आएगी, लास्ट में आई, आने वाली है। हाँ, वो लास्ट वाला एकदम उत्तर अभी दे दो तो क्या फायदा। हाँ अभी इच्छा से होता है ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आया मेरे। इच्छा तो हाँ, कर्म के उदय से समुद्घात नहीं होता है, जो कर्म बंधा हुआ है ऑलरेडी, आयु कर्म बंधा हुआ है, कहाँ जन्म लेना है वो सब निश्चित है, उसके सारे परिणामों से जो कुछ बन गया है उसकी सत्ता में कर्म पड़े हैं, वो सत्ता में पड़े हुए कर्म एकमात्र कारण है, उसके उदय के कारण नहीं होता है और ना ही इच्छा के कारण होता है। वो उनकी इच्छा के लिए नहीं होता है। मुनिराज जो आहार के लिए जाते हैं और अभिग्रह लेके ऐसे करके जाते हैं, मन में कोई ऐसा लेते हैं कि इसी पद्धति से कोई हमें वहां खड़ा हो तो मैं वहां रुकूंगा, या वो जैसे पड़घान करके हमें ले जाएंगे तो मैं ले लूंगा, उसमें तो वो ऐसी अटपटी लेना चाहते हैं कि वो पूरी नहीं हो। आहार की इच्छा तो हो गई है, परंतु ऐसे कुछ अटपटी कंडीशंस मन ही मन में लेते हैं। और देखो, भोजन का संयोग होने वाला है तो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध, किसी के ऐसे विकल्प आएंगे? जैसे किसी मुनिराज ने ऐसा मन में धारण किया कि कोई सफेद वस्त्र से पति पत्नी वहां, या कोई ऐसे जोड़े से खड़े रहेंगे, कोई ऐसा कहेंगे हाथ में नारियल लिया हुआ, कोई कहेंगे चांदी की थाली है, कोई कहेंगे मिट्टी के पात्र है। जैसे रामचंद्र जी के समय की बात है ना, मुनिराज ने ऐसा अभिग्रह लिया था, मिट्टी के बर्तनों में जो कुछ करके हमको भोजन कराएंगे वहां हम जाएंगे। तो यदि भोजन का वहां निमित्त मिलना है तो वैसे सहज ही वो संबंध भी मिल जाता है, सहज होता है। जैसे अन्य अन्य रसों का त्याग होता है, वैसे कहीं भी आहार को चले जाए ऐसा न हो इसलिए मन में कोई ऐसा धारण करके चले जाते हैं। महिलाएं आहार देती है क्या, ऐसा आपका कहना है? अभी ऐसे ना, उनके साथ पुरुष भी होते हैं, महिलाओं के साथ पुरुष भी होते हैं, तभी उसकी यथाविधि आपने कभी देखी नहीं लगती है। हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो हम रुकते हैं क्योंकि बच्चों का समय भी हो गया है। हाँ, प्रश्न हो तो शाम को पूछो, अभी देखो आपको जाना है, 9:45 हो गए। हाँ हाँ बोलो। हम करेंगे इसकी चर्चा, मैं क्योंकि अभी शाम को भी अपादान वगैरह की बात आने वाली है ना, हम उसकी चर्चा करेंगे, यही रुकते। बोलो 2400 भगवान की जय।
बोले द्वादशांगनवाणी माता की जैन धर्म की तीन कंधो करोड़ मुनिराज की
दोपहर का 3 बजे का 3 बजे का